ओम शांति। ना हमें मंजूर नहीं आपकी ओम शांति। प्यार से बोलो ना, अच्छी तरह बोलो ओम शांति। ओके, आज का विषय हमारी प्रमुख शिक्षा पर है। व्यक्ति को संसार में जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान किसी को दे करके अकेले बिठा दो, वो कितना समय जीवित रहेगा? उसका मन करेगा मैं बाहर जाऊं, मुझसे लोग मिलें, मैं लोगों से मिलूं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वो रह नहीं सकता, उसे समाज चाहिए। जो जंगलों में रहते हैं वे भी वापस शहरों में आ जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता उसका प्रथम पाठ तुम आत्मा हो, और हे अर्जुन देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग कर मेरी शरण में आ तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो दो संसार हैं, एक संसार है देह और देह के संबंधों का संसार, और दूसरा संसार है आत्मा और आत्मा के संबंधों का संसार। आज सवेरे भी बाबा ने बताया तुम्हारे संबंधों में क्या है, मम्मा ने बताया तुम्हारा कितना छोटा सा परिवार है, मां बाप, भाई बहन और कोई। तो बाबा जब नई सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं तो बाबा मूल चीज का परिवर्तन करते हैं, जिससे सारे परिवर्तन हो जाते हैं। वो मूल चीज क्या है। दो शब्दों में वो दो संसार आ जाते हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। जब मैं कहते हैं तो आत्मा, मेरा कहते हैं तो ये संसार। तो बाबा आकर मैं की परिभाषा बदलते हैं। मैं की परिभाषा बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आज हम सब माता पिता शिक्षक गुरु सखा स्वामी सब हमारे साथ हैं। फिर बाबा क्यों कहता है मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो? कोई भी संबंध के लिए, कोई भी आत्मा के लिए हम ये नहीं कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुस्तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमम देव देव, किसी मनुष्य आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। ये महिमा शिव बाबा की है और ये महिमा निराकार की ही हो सकती है, साकार किसी की भी ये महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण श्री राधे हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, श्री राम श्री सीता हैं, शंकर पार्वती जी को दिखा देते हैं, आप उनको या तो मां कहेंगे या आप उनको पिता कहेंगे। श्री राम को माता पिता नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को माता पिता नहीं कह सकते, श्री नारायण को माता पिता नहीं कह सकते, श्री लक्ष्मी को माता पिता नहीं कह सकते, वो मां है पिता नहीं है। या तो व्यक्ति जो साकारी है, या तो वह हो सकता है पिता या हो सकता है मां, दोनों तो नहीं हो सकता। ये महिमा केवल निराकार के साथ लगती है और कोई के साथ नहीं। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को अपना अनुभव कराने हेतु, मैं तुम्हारी मां भी हूं, पिता भी हूं, शिक्षक भी, सब कुछ हूं, ये अनुभव कराने हेतु प्रजा पिता ब्रह्मा का माध्यम शरीर अपनाते हैं। अब एक में ही सारे संबंधों, ब्रह्मा में सारे संबंध नहीं हो सकते। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि यज्ञ को संभालने के लिए मां को अडॉप्ट किया जाता है, मम्मा को अडॉप्ट किया जाता है। शिव बाबा ने मेरा तन लिया, उस हिसाब से बड़ी मां हो गई, वो पिता हो गया। परंतु जो वास्तविक संबंध है वो तो शिव बाबा के साथ है ना। अब पिता का जो संबंध है, आप लोग कौन सा संबंध चाहते हो? सर्व संबंध या कोई दो चार सिलेक्ट करने हैं? सर्व, ठीक है। पिता क्या करता है? पिता बच्चे को जन्म देता है। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को कितना ऊंचा जन्म दिया, कितना ऊंचा जन्म दिया सोचो। हम कहां थे? बाबा कहते कलयुगी दुनिया में, कचरे की दुनिया में थे। बाबा ने हमें निकाला, अपना परिचय दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं। अनादि पिता हूं, तुम मेरी अनादि संतान हो। पिता के नाते तुम्हें श्रेष्ठ जन्म का अधिकारी बनाता हूं। वह जन्म जो मैं ही दे सकता हूं, दिव्य अलौकिक जन्म। इस शरीर में रहते हुए हम पुरानी दुनिया को, पुराने संसार को, पुराने संबंधों को भूल जाते हैं और नए अलौकिक जन्म को एंजॉय करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तुम्हारी वेला, तिथि, तारीख सोचो तो सही, किसके साथ है? भगवान के साथ है। वह जन्म जिससे पूरा चक्र बदल जाता है, पूरा चक्र बदल जाता है। कैसे जन्म दिया? एक शब्द से, तुम मेरे हो। यही तो कहा बाबा ने, तुम मेरे हो। मेरा कहकर अपना बना लिया। कभी आपने अपने जन्म की महिमा सोची है, मनन की है? जन्मते ही दो ताज का अधिकारी बना देता है। लाइट का ताज, पवित्रता का ताज और राज्य अधिकार का ताज। जन्म लेते ही, जन्म लेते ही अपनी माला का मणका बना देता है। जन्म देते ही मुझ आत्मा को वारिस बना देता है। तुम मेरे वारिस हो। कितने ऊंचे पिता के पास जन्म लिया जिसका वर्षा कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। और एक जन्म का वर्षा नहीं, सारे कल्प का वर्षा लेते हैं। 21 जन्म का नहीं, हम बच्चों के 84 जन्म बहुत अच्छे होते हैं। आज भी अगर हम देखें, शायद ही कोई ऐसा ब्राह्मण होगा जिसको खाने को ना मिलता हो। मैंने तो नहीं सुना। आखिरी जन्म हम ब्राह्मणों के नाम से आज दुनिया में कितने काम हो रहे हैं। हमारा नाम औरों की कमाई का साधन आज भी है। आप सोचो कितना ऊंचा जन्म है। पिता ने अपनी गोद का मालिक बनाया। जन्म देते ही पिता होता है ना, तो पिता क्या करता है, बच्चा जन्मता है तो उसको गिफ्ट देता है। आप सब तो माताएं हो, सब जानती हो, पिता बच्चे को गिफ्ट देता है ना। तो बाबा ने हमें क्या दिया, जन्मते ही तीसरी आंख देता है। जिस तीसरी आंख से हम त्रिकालदर्शी भी बनते हैं तो त्रिलोक के मालिक भी बनते हैं। हमारा पिता हमारी कितनी पालना करता है। सिर्फ जन्म देकर के छोड़ नहीं दिया, पालना कितनी करता है। रोज हमारे लिए नई नई बात खिलौने के रूप से लेके आता है। बच्चे ये रत्न है, तुम मेरे बच्चे रत्नों से खेलने वाले हो। सोचो तो सही कितनी ऊंची पालना है, रत्नों से खेलने वाले हो। हमारे लिए रोज नए नए रत्न लेके आता है। पिता बच्चे को परिवार का कल्चर सिखाता है। हर पिता, लौकिक में पिता, बच्चे को फैमिली का कल्चर सिखाता है। अरे तुम किस फैमिली के हो, आप माताएं बैठी हो, पिता यही करता है ना। परिवार की स्मृति दिलाता है, तुम किस परिवार के हो। मीठा बाबा, हम बच्चों को हमारे परिवार की स्मृति दिलाता है। अरे तुम सूर्यवंशी, कितना ऊंचे घराने के हो, कितने रॉयल हो। तख्त नशीन हो, रॉयल फैमिली के हो। तुम्हारी डायनेस्टी ने राज्य किया है। हमको स्मृति दिलाता है। वो पिता जैसे बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है, हमारा पिता हमें कितने रॉयल रीति से कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजता है, सोचो तो सही। कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी की 147 देशों में शाखाएं हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजता है, सोचो। और कहता है रॉयल फैमिली मिट्टी में पांव नहीं रखती है, बच्चे को मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। हमारा बाबा हम बच्चों को मिट्टी में दैहिक दुनिया में पांव नहीं रखने देता, हमारी संभाल करता है, बारंबार संभाल करता है, अपनी गोद में ले लेता है, अपने कंधों पर बिठाता है, कंधों पर बिठा के सारा वर्ल्ड घुमाता है। सोचो तो सही, हमारा पिता कितना ऊंचा है। वो पिता फिर भी बच्चे से कुछ आशा रखता है, हमारा पिता तो हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। क्या कहता है, तुम लायक बनो, तुम लायक बनो। पिता बच्चे को कमाई करने के योग्य बनाता है, हमारा पिता हमें ऊंचे से ऊंची कमाई करने के योग्य बनाता है। जितनी मर्जी करना हो करो, जितनी मर्जी करो, हमारा समय उसको वरदान दे देता है कि तुम इतना करोगे तो उससे इतनी प्राप्ति होगी, ऐसी कमाई, ऐसा व्यापार करना सिखाता है। तुम कौन से व्यापारी हो, तुम हीरे रत्नों के व्यापारी हो, तुम कूड़े करकट के व्यापारी नहीं हो, हीरे रत्नों के व्यापारी हो। क्या सुना माताएं, क्या सुना, हीरे रत्नों के व्यापारी, कोई कूड़े करकट के व्यापारी तो नहीं। हमारे बाबा ने, हमारे पिता ने हमें हीरो रत्नों का व्यापार सिखाया है, कचरे का व्यापार नहीं सिखाया। सोचो, जिसका पिता रोज अपने बच्चे को वरदान देवे, अपने बच्चे को गिफ्ट देवे, कौन सा ऐसा पिता होगा रोज बच्चे के लिए गिफ्ट लाता होगा, है कोई, कोई का पिता है लौकिक में, है कोई जो बच्चे के लिए रोज गिफ्ट लाए। हमारा बाबा हमारे लिए रोज गिफ्ट लाता है, रोज नई गिफ्ट होती है, और वो गिफ्ट हमको मुरली के माध्यम से मिलती है। ऐसे पिता को जो कि सदा प्यार ही प्यार करता है, आंख नहीं दिखाता, प्यार करते हुए प्यारा बना देता है, प्यार प्यार से प्यारा बना देता है। ऐसा है ना अपना बाबा, है ना। हम किसी की सुने या ना सुने, लेकिन बाबा जो सुनाता है वो हमको कितना अच्छा लगता है। बाबा प्यार में कहता है, तुम बुद्धू थे, तुम बेसमझ थे। हम कहते जी बाबा, थे ना भाई, थे ना, या होशियार थे आप। एक बार बाबा मधुबन में मुरली चलती थी ना, मैं बात कर रही हूँ आज से 60 साल पहले की। तो मम्मा 60 साल से भी ज्यादा, तो मम्मा की पहले मुरली चलती थी, उसके बाद बाबा आते थे। तो बाबा चाहे, उन दिनों माइक्रोफोन तो होता नहीं था, तो बाबा चाहते थे मम्मा क्या सुनाती है मैं सुनूं। ये सब मम्मा की बहुत महिमा करते थे। तो बाबा मम्मा की मुरली सुन धीरे 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 आते, मम्मा को पता ना लगे। लेकिन मम्मा इतनी तीखी थी, बाबा के कदमों की आहट मम्मा को आ जाती थी, और जैसे बाबा आते थे मम्मा चुप हो जाती थी, मम्मा बाबा के आगे नहीं बोलती थी। जब बाबा गद्दी पर बैठते थे, पहले मम्मा बैठते थे ना, फिर जब बाबा गद्दी पर बैठते थे तो मम्मा थोड़ा सा अपने आप को ऐसे टर्न करके एक टक बाबा को देखती रहती थी, बाबा क्या कहता है आज, बाबा क्या कह रहा है आज, बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा ने कहा, तुम सब बच्चे पीछे क्या बन गए थे, विकारों के कारण, जैसे बंदर होते हैं, बंदर जैसा करते हैं वैसे तुम बच्चे भी, तुमको मैंने मंदिर बनाया, मंदिर से तुम बंदर लायक बन गए। मम्मा तुम भी बंदरी थी ना। जी बाबा, जी बाबा। तो हम सब कितने बेसमझ थे, प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझदार बनाया, हर प्रकार की समझ। जिसको पिता अपने बच्चे को नर्चर करता है ना, ऐसे शिव बाबा ने हम बच्चों को कितना समझदार बनाया, कितना समझदार बनाया, बोलो, कितना समझदार बनाया। इतना समझदार बनाया जो हम रियलाइज करते हैं कि हम बेसमझ थे, इतना समझदार बनाया। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करेंगे, कितना प्यार से याद करेंगे। अब ये संबंध हम निभाएंगे कैसे, बाबा के साथ पिता और पुत्र का ये संबंध हम निभाएंगे कैसे, बोलो। देखो किसको टच होता है, बोलो बोलो। अरे माताएं तो होशियार होती हैं आंसर देने में, बोलो। हाँ जी, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। आज्ञाकारी बनकर हम ये संबंध निभाएंगे बाबा के साथ, आज्ञाकारी बनकर। मंजूर, मंजूर है, हाथ ऊपर नहीं है तो मैं समझती हूँ कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। हाथ ऊपर, मंजूर ना। आज्ञाकारी बनकर, बाबा आपकी जो आज्ञा होगी उसका हम पालन करेंगे, करेंगे ना, करेंगे। बाबा आप जो हमारी पालना करते हो, रोज हमारे लिए नया नया आप लाते हो, हमारे लिए नई नई गिफ्ट लाते हो, इसका उजूरा हम आपको अवश्य देंगे। माता पिता यही चाहते हैं ना कि बच्चा लायक बने, लायक बन करके मेरा नाम रोशन करें। बाबा, हम आपके लायक बच्चे, अब हम नालायक नहीं हैं, अब आपके लायक बच्चे, हम आपका नाम अवश्य रोशन करेंगे, करेंगे, है ना? बाबा, आपने जो हमें फैमिली के मैनर्स सिखाए, फैमिली कल्चर सिखाया, वो रॉयल्टी हम अवश्य निभाएंगे, हम अवश्य ऐसे रॉयल बनेंगे। पक्की बात? इसका अर्थ है कि हम साधारण नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाती हूं। मधुबन में रॉयल फैमिली है ना राजाओं की, नेपाल के राजा आए, पूरा राज परिवार आया था नेपाल का। तो गुलजार दादी बताते थे, उसकी जो रानी थी ना, रानी बिल्कुल आंख ऐसे नीचे करके बैठी रहती, बड़े रॉयल फैमिली है ना, रॉयल फैमिली, तो कोई इधर करे उधर करे, इधर देख उधर देख नहीं, रॉयल लोग आप देखेंगे एकदम स्थिर बैठते हैं, स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है। तो गुलजार दादी कहते हैं कि इतनी रॉयल्टी, जो उसकी आंख एकदम नीचे, दादी कहती है मेरे को लगा इसकी पता नहीं आंख ठीक है भी कि नहीं, जब मिली तब उसने आंखें ऊपर की, आंख नीचे। तो हमारी अलौकिकता, हमारी रॉयल्टी किस में है? शिष्टाचार में है, हमारा बोलना। कहते हैं ना, तुम किस फैमिली के हो? बहुत अच्छी फैमिली के हैं। तो अच्छी फैमिली के लोग क्या करते हैं? अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी चाल चलन चलेंगे, उनका हर चीज पर कंट्रोल होता है रॉयल फैमिली का। तो हमारी बाबा ने जो रॉयल फैमिली बनाई है, हमारा शिष्टाचार, हमारे कल्चर, हमारे मैनर्स कितने अच्छे होने चाहिए, ये है संबंध निभाना। कहते हैं ना, कैसे संबंध निभाएं, ये संबंध निभाना है, ठीक है? अब चलो, मैं सोचती हूं 10 मिनट या 15 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट, फिर और संबंध भी है ना, बाबा की याद में, बाबा को थैंक्स देते हुए, और अपनी ओर से बाबा को आश्वासन देते हुए, ये सारी बातें जो मैंने सुनाई, बाबा हम ऐसे आपकी गोद के मालिक हैं, मैं आपकी गोद का बच्चा हूं, आपने मुझे इतना श्रेष्ठ जन्म दिया, थैंक यू बाबा। बाबा से प्यार से दृष्टि लेना, और संबंध जो निभाना हम कहते हैं, वो केवल बैठ करके नहीं होता है, बैठ करके हम ये सब बातें बाबा से रूहान करते हैं, बच्चा पिता के साथ रूहान करता है ना, पिता को आके सब कुछ बताता है ना, आज पापा घर में स्कूल में ये हुआ, बताता है ना। ऐसे हम भी अपने पापा को, बाबा को सब कुछ सुना, अपना दिल खाली कर दो। आजकल यही बोलते हैं ना कि भाई बच्चों बच्चे अपने दिल में कुछ भी नहीं रखें, सब खाली कर दें। तो हम भी अपना सब कुछ खाली कर दें, जो मन में टेंशन जो भी आपको आता है, बाबा सब कुछ सुनने को तैयार है। बाबा के आगे रख दो, ठीक है। चलो 10 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे और पिता के रूप से याद करिएगा, ठीक है। ओम शांति। स्वयं को इस देह और देह की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन निवासी अति शक्तिशाली अति रॉयल स्वराज अधिकारी आत्मा निश्चय ब्रह्मा बाबा के सामने उपस्थित करें। शिव बाबा ब्रह्मा के ललाट में ब्रह्मा के नैनों से मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा आपने मुझे नया जन्म देकर। अपनी गोद का मालिक बना लिया। अपने वर्षे का अधिकारी बना दिया। आपने मुझे जीना सिखा दिया। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। आपने मुझे तीनों लोकों का मालिक बना दिया। मैं अवश्य आपके बताए हुए मार्ग पर पूर्ण रीति से चलूंगी। आपकी सदा आज्ञाकारी होकर रहूंगी। सभी ने अच्छी तरह से किया। जिन्होंने अच्छी तरह से किया, दिल खुश हुआ, वो हाथ खड़े करो। जिनके हाथ नीचे हैं, कोई हर्जा नहीं, कोई कारण हुआ होगा, लेकिन ये अभ्यास दिल से आप लोग करना। अभी तो मैंने कमेंट्री दी ना, दिल से आप ओरिजिनल, जैसे बच्चा बाप से बात करता है, ऐसे बाबा से बातें। अब चलो माँ क्या करती है, माँ बच्चे को पालती पोसती है, बड़ा करती है। माँ बच्चे को खुराक खिलाती है, उसकी मालिश पालिश करती है, उसको उठना बैठना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नई नई ड्रेस पहनाती है, बच्चे का श्रृंगार करती है। माँ खुश होती है ना बच्चे का श्रृंगार कर, श्रृंगार करती है। फिर माँ बच्चे को गलती करने से बचाती है, शिव बाबा हमारी माँ रोज नई ड्रेस देता है, कभी फरिश्ते की देता है, कभी लाइट की देता है, कभी बालक की देता है, कितने लाड प्यार से बाबा बोलता है। रोज बोलेगा मीठे बच्चे, बच्चे चाहे कड़वे हों लेकिन बाबा कहता मीठे बच्चे, मीठा मीठा कह करके मीठा बना देता है, रोज खुराक खिलाता है। माँ बच्चे को खिलाती है ना बादाम पिस्ता, माजून कूट करके खिलाती है ना, बाबा हमको कितना खिलाता है, मुरली में कितना खिलाता है। और माँ क्या करती है, कोई गलती करती है तो माँ इशारा देती है, कभी आंख भी दिखाती है, बच्चा लायक बने, गंदगी में ना जाए, बच्चे का ध्यान रखती है, संग का रंग खराब ना लगे, और बच्चे की सब बात सुनती है। आप सब माताएं बैठे हो, बच्चा आता है स्कूल से, पहला काम क्या करता है, आपको सारा कुछ सुना देता है, फिर छुट्टी, फिर फ्री हो जाता है। ऐसे करते ना बच्चे, स्कूल से आएंगे अपना सब कुछ सुना देंगे, बस्ता रखा, उसके बाद माँ के गोद में आएंगे, सब कुछ सुना देंगे, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और निश्चिंत हो जाते। हमारा बाबा हमारी माँ भी है, और माँ के रूप से मीठा बाबा हमारी सब कुछ सुनता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमारी कौन सुनता है, कौन सुनने वाला है, बाबा कहते मैं बैठा हूं, मैं सुनने वाला हूं, मेरे को सुनाओ, इधर उधर नहीं सुनाओ, मेरे को सुनाओ, मैं सब सुनूंगा। मां को सुन, फिर माँ और क्या करती है? बोलो, आप लोग क्या करते हो? बच्चे की पालना, मालिश मालिश करते हैं ना। माँ एक ऐसा संबंध है, दुनिया में क्या कहावत है, माँ नहीं मिल सकती, है ना? माँ कभी कुमाता नहीं होती, और कुछ हो सकते लेकिन कुमाता नहीं होती माँ। तो जो हमारी माँ है हमें सीख देती है, शिक्षा देती है, मैनर्स सिखाती है, पिता से संबंध जुड़वाती है। पिता का परिचय कौन देता है? मां देती है। पिता का रिगार्ड रखना कौन सिखाता है? मां सिखाती है। प्यारे बाबा, हम बच्चों को ये सब चीजें सिखाते, सब बातें सिखाते। ब्रह्मा का रिगार्ड रखना है, ब्रह्मा के आगे बोलना नहीं है, माताएं सिखाती है ना बच्चों को। कभी भी बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों के आगे चुप रहना, बड़ों को आंसर बैक नहीं करना, सिखाया माँ ने या नहीं सिखाया? भूल गए? माँ ने सिखाया था, सबकी माँ ने सिखाया था ना, और आप भी सिखाते होंगे। कभी भी बड़ों को जवाब नहीं दो, आंसर बैक नहीं करो, तो बाबा मुरली में जो कहता है, कभी कभी बच्चे रूठ जाते हैं, कभी कभी बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, बाबा आपको क्या पता, आप तो माउंट आबू में ठंडी हवाओं में रहते हो, हमसे पूछो क्या होता है। तो ये भी बाबा का डिसरिगार्ड है। बाबा को हम ऐसे कह सकते हैं क्या? बाबा अनजान है? बाबा जानी जाननहार है। मां बच्चे के चाल चलन से समझ जाती है, चाल ढाल से मां समझ जाती है। बाबा भी हमारी चाल चलन से, हमारी दृष्टि से बाबा समझ जाते हैं, बाबा शिक्षा देते हैं। मां बच्चे की गलती को नोटिस करती है और धीरे धीरे पुरुषार्थ करती है, बच्चा उससे फ्री हो जाए। पिता के सामने बच्चा जाएगा तो पिता डांट लगा करके उसको भेज देगा, मारेगा भी, चांटा भी लगाएगा, लेकिन मां क्या करेगी? बच्चे को ले लेगी, गोद में ले लेगी, समझाएगी, और उस गलती से बच्चे को, उस कमजोरी से मुक्त करने का पुरुषार्थ करेगी। ऐसे है ना? आप बच्चे को पार्टी पे लेके जाते हो, बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो आप क्या करते हो? दूर से, आप उसको बोलते कुछ नहीं हो, दूर से सिर्फ उसको दृष्टि देते हो, बच्चा समझ जाता है मुझको ये नहीं करना है, ऐसे होता है ना? तो बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन, आप देखो मुरली में संकेत देता है, इशारे देता है, रहम दिल है। रहम दिल होकर के हमारी गलती को माफ भी कर देता है, परंतु ऐसी मां जो कभी हारती नहीं, कितने कड़े संस्कार बच्चे के हों, शिव बाबा मां कभी हारता नहीं, सुधार करके रहे और सुधार करके अपने साथ ले चलता है। ऐसी मां को इसका और भी विस्तार कर सकते हैं। बच्चे का श्रृंगार करना, हम बच्चों का कितना बाबा श्रृंगार करता है। ब्रह्मा बाबा था ना, हीरो जवाहरों का व्यापारी था, तो दादी निर्मल शांता बताते थे नया नया जेवर बनाता था बाबा, तो हमको पहनाता था और पार्टी में ले चलता था, तो सब पूछते थे ये कहां से लिया, ये कहां से, किसने बनाया, तो बाबा कहते मेरी दुकान बड़ी अच्छी चलती थी। तो बाबा जो हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा कहते मैं अपने बच्चों को शोकेस में रखता हूं, इतना अच्छा श्रृंगार करता हूं। बाबा जो श्रृंगार करते हैं, हमने उस श्रृंगार को मिटाना नहीं। बाबा मुरली में कहता ना, कई बार श्रृंगार करते हैं फिर जाकर के वो जानवर का नाम लेते हैं, वो जाके फिर धूल में पड़ता है, फिर भी बाबा हमको छोड़ता नहीं है, फिर भी छोड़ता नहीं। ऐसे बाबा का कितना हम शुक्रिया करें। मां के सहयोगी बनना होता है, मां कर्म करना सिखलाती है। तो बाबा के सहयोगी बनना, किस रूप से सहयोगी, बाबा की रचना के कार्य में सहयोगी, निर्माण के कार्य में सहयोगी, पालना के कार्य में सहयोगी, ये तो हम कर सकते हैं। इतनी सी बात, फिर चलो शिक्षक, शिक्षक मां की एक और विशेषता है कि मां बच्चे की महिमा को देख करके वर्णन नहीं करती है, खुश होती है लेकिन समाती है। मां समाती है, कभी मां अपने बच्चे की महिमा नहीं करेगी। ऐसे है ना, सबके बीच में मां महिमा नहीं करेगी, समाएगी, सुनेगी, दूसरे महिमा करें समाएगी। बाबा भी हम बच्चों को महिमा योग्य बनाता है, लेकिन एक एक की बैठ करके दुनिया के आगे वर्णन नहीं करता है, महिमा योग्य बनाता है। हमने उस महिमा को साकार रूप देना है। फिर चलो टीचर के रूप से, शिक्षक, हमारे शिक्षक ने क्या किया, दुनिया में वह एम हमको बताई, वह लक्ष्य दिया जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बताओ कौन सा लक्ष्य दिया। आज दिन तक सबने कहा श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो, क्या किसी ने ये कहा था कि आप स्वयं लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, कहा था? ये काम केवल हमारे परम शिक्षक शिव बाबा ने किया। कि बच्चे तुम ही तो थे, स्मृति दिलाई। जब हमें स्मृति आई, हमने वो पुरुषार्थ आरंभ किया। हम ही थे, हमें ही बनना है। तुम पूज्य हो, पच्चीस सौ साल पुजारी रहे, ये एम ऑब्जेक्ट सुप्रीम शिक्षक हम बच्चों को देता है। फिर हमारा शिक्षक ऐसा शिक्षक है जो कभी भी स्कूल बंद नहीं करता है, ऐसे है ना? हमारा शिक्षक कभी भी हॉलिडे पर नहीं जाता है, ना जाता है और ना हमको जाने देता है। यही कहता है ना, कहीं पर भी रहो परंतु मुरली जरूर पढ़नी है। अब मैं पूछती हूं, कितने बैठे हैं जो कभी मुरली मिस नहीं करते? देखो इसमें थोड़े थोड़े हाथ नीचे हैं। इस भट्टी से कुछ भी हो जाए, हमने मुरली मिस नहीं करनी है, ये दृढ़ संकल्प कितने लेते हैं? जिनके हाथ नीचे हैं, क्यों? इधर बड़े डर डर के उठा रहे हो हाथ, क्या बात है? देखो बाबा कितना दूर से आता है, सबसे दूर से कौन आता है? तो हम मुरली मिस क्यों करें? बाबा मुरली चलाने आता है, हम मुरली मिस क्यों करें? हमें तो नशा है, हम तो कभी मुरली मिस नहीं करते हैं। और आज से नहीं, 60-62 साल से कभी मुरली मिस नहीं की, कभी मुरली मिस नहीं की। बाबा ने कहा अच्छा स्टूडेंट 5 बार मुरली पढ़ता है, उन दिनों में 5 बार मैं पढ़ती थी। हमारी दादी जानकी 12 बार पढ़ती थी। दादी जानकी इतनी बड़ी हमारी दादी, उसको तो सारी बुद्धि में सारा ज्ञान था, लेकिन बाबा ने कहा दादी जानकी 12 बार मुरली पढ़ती थी। तब तो दादी जानकी बनी। कुछ भी हो, आज सोचो आपको प्रेसिडेंट कोई 2 शब्द बोल देता है, आप कितने खुश होते हो? प्रेसिडेंट ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और भगवान कह रहा है और मुरली मिस, इसका मतलब क्या हुआ? उस दिन बाबा ने मुरली में क्या कहा कि अगर मुरली मिस करते तो बाबा का डिसरिगार्ड है। आप डिसरिगार्ड करने वाले तो नहीं हो ना, अच्छे स्टूडेंट हो ना, डिसरिगार्ड नहीं करना। तो कभी भी मुरली मिस नहीं करो, कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करनी। तो हमारा टीचर हमको, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, हमारा टीचर हमको कितना विशाल पढ़ाता है, कितनी विशालता से पढ़ाता है, जो हम एक जन्म नहीं परंतु 84 जन्म के लिए कमाई करने के योग्य बन जाते हैं। ऐसा टीचर कोई होगा? वो टीचर एक जन्म की कमाई के लिए भी नहीं हमको तैयार करते हैं। थोड़ा सा तैयार करके फिनिश्ड। बात चल रही थी हमारा टीचर हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, जो एक जन्म के लिए नहीं परंतु 84 जन्म के लिए कमाई करने के योग्य बना देता है। वहां तो एक जन्म में खत्म हो जाती है, यहां तो 84 जन्म चलती है। फिर वह राज हमारा टीचर हमको बताता है जो दुनिया में कोई नहीं बता पाया। अपना परिचय खुद देता है, हमारा परिचय देता है, तीनों लोकों का ज्ञान देता है, तीनों कालों का ज्ञान देता है। कितना हमको ऊंचा बनाता है, कितनी ऊंची डिग्री देता है, सोचो तो सही। कितनी ऊंची डिग्री के काबिल हम बन जाते हैं। अपनी डिग्री का नाम तो बताओ, कौन सी डिग्री मिलती है? बताओ, इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी में तो डिग्री भी तो ऊंची होगी। बोलो, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी डिग्री। कितनी ऊंची डिग्री है, कौन देता है ये डिग्री? कौन देता है इस दुनिया में? कोई देता है? बाबा हमको इतनी ऊंची डिग्री देता है, फिर ऐसा ज्ञान देता है जिससे हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, कलयुग से सत्युगी हो जाता है। क्या ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान से आप देखो, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, आत्मा के ज्ञान से आप देखो कितना परिवर्तन हमारी जिंदगी में आ जाता है। सिर्फ आत्मा का ज्ञान मिला, जितनी फैशन परस्ती थी, साज श्रृंगार था, रोज नए नए फैशन के कपड़े खरीदते थे, वो सब बचत होनी शुरू हो जाती है सिर्फ आत्मा के ज्ञान से। तब बाबा कहता है, राइट बात है या नहीं? बाबा कहता है एक एक रतन लाखों रुपए का है, है? अगर आप एक एक रत्न को लो, उससे आपकी कितनी बचत होती है आप देखो। टीचर ने आपको ऐसा ज्ञान दिया जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंची हो गई। सब फालतू फंड के खर्चे, नशीले पदार्थों पर, फैशन पर, ताश पर, किट्टी पार्टी पर, सब खर्चे बच गए, तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो गया ना। फिर ये टीचर हमारा ऐसा है जो कभी हमसे थकता नहीं है। जो दूसरे टीचर होते हैं वो तो फिर भी थक जाते हैं, तुमको एक बार समझाया समझ में नहीं आया, बोलते हैं ना कहां थी बुद्धि। और यहां हम आत्मा का पाठ कितने साल से पढ़ रहे हैं, वही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी बाबा थकता नहीं है, क्या तुमको आत्मा ही लेके जाऊंगा, फिर भी थकता नहीं। तुम्हारा टीचर कितना कितना धैर्यवान है, कितना धैर्यवान है, कितना रहमदिल है। हाँ, ये कहते हैं पढ़ाई में मैं आशीर्वाद करने वाला नहीं हूं, पढ़ाई में मैं आशीर्वाद करने वाला नहीं हूं, पढ़ना तुमको है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर को जो इतना प्यार से पढ़ाता है, रोज पढ़ाता है, बिना नागा पढ़ाता है, और रोज आप देखो उसकी पढ़ाई की कमाल क्या है, देखो कौन बताता है, बाबा की पढ़ाई की कमाल क्या है, बोलो 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 बोलो। वो कमाल किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, बाबा की है। बताओ बाबा की पढ़ाई की कमाल, उसकी हर मुरली हमको नई लगती है, कमाल नहीं है? कितनी कमाल है, ज्ञान वही है परंतु वो सागर है, ज्ञान का सागर है, और ज्ञान का सागर होने के नाते नित्य नई मुरली हमको लगती है। आप मुरली 5 बार पढ़ेंगे ना, आप ट्राई करके देखना, मैंने तो किया है, आप 5 बार पढ़ेंगे मुरली, आपको 5 बार नई नई बातें मिलेंगी, 5 बार नई बातें मिलेंगी आपको, आप करके देखना। ये कमाल हमारे टीचर की है, उसकी पढ़ाई की है। ऐसी पढ़ाई कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा सिवाय बाबा के, और कोई नहीं पढ़ा सकता। और फिर देखो हम भी स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, अपन को कम थोड़ी समझना है। अगर हमको कोई दूसरा पढ़ाता तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, बाबा पढ़ाता है, दौड़ दौड़ करके आते हैं पढ़ने के लिए। हम अपने टीचर के ही काबू में आए हैं, अदरवाइज हम काबू आने वाले नहीं थे। कोई हमको काबू नहीं कर सकता था, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अपने महावाक्यों से काबू किया हुआ है। सब मुरली के दीवाने बैठे हैं, सब मुरली के दीवाने। ये उसकी पढ़ाई की कमाल है ना। तो कितना बाबा को प्यार से याद करना चाहिए अपने शिक्षक को। शिक्षक मैनर्स भी सिखाता है ना। शिक्षक मैनर्स सिखाता है। बाबा हमको कितने रॉयल मैनर्स सिखाते हैं, याद करो। पढ़ाई के मैनर्स क्या हैं? बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं तो इधर उधर नहीं देखो, सिर्फ मेरे को देखो। अगर कोई इधर उधर देखता था ना, तो बाबा कहता था वहां क्या देख रहे हो। हमारी गुलजार दादी भी, गुलजार दादी जब क्लास में होते थे ना, हम लोग सामने बैठते थे, दिल्ली में पांडव भवन में दादी रहते थे, तो सामने बैठते थे और अगर हमारी आंख कहीं गई, कोई व्यक्ति आया उस तरफ आंख गई, तो दादी कहती थी आपकी ड्यूटी है उसको बिठाने की। नहीं दादी, हमारी ड्यूटी तो नहीं है, फिर वहां क्यों देखा। तो एकाग्रता, इसको मैनर्स कहते हैं। जब बाबा पढ़ा रहा है तो अपनी बुद्धि एकाग्रचित होनी चाहिए, अटेंशन इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो हमको इतना अटेंशन से, अगर मानो बाबा आए मुरली चलाए और आपको ना देख करके इधर उधर देखे, इधर उधर देखे मुरली चलाए, आपको अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी ना। बाबा भी तो एकाग्रता से चलाता है। ऐसे जब हम सुनने वाले हैं तो हम कितने एकाग्रचित होकर सुनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टीचर को हम क्यों नहीं प्यार से याद करें। हाँ, एक चीज और, कभी भी जो हमारा टीचर है उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं बाबा ने ये बात क्यों नहीं बताई, बाबा अभी ये बात बाबा जानता है, बाबा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ सर्वज्ञ को सर्वथा नहीं जान सकता जब तक सर्वज्ञ अपना परिचय स्वयं न दे। हमारी सोच समझ कम है। बाबा की तो सर्वज्ञ है, जाने जाना ना रहे। शुरू में बाबा कहता था आत्मा कैसे अंगूठाकार। बहुत समय के बाद 60s में बाबा ने कहा आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है। अब कोई कहे बाबा ने पहले ये ज्ञान क्यों नहीं दिया। पहले हमारी बुद्धि इतनी काबिल नहीं थी जो बिंदु को समझ सकती। तो जितना जितना बच्चा आगे बढ़ता जाता है, बुद्धि विकसित होती जाती है, उस अनुसार ज्ञान देगा ना। या हम टीचर को कहेंगे कि आपको पहले सुनाना चाहिए था हमको। टीचर के हम टीचर हैं क्या? बाबा की जो मुरली के अंदर बातें आती हैं, जो बाबा कहता है उस पर मनन चिंतन करना है, अपना मनन चिंतन नहीं करना है। जैसे कोई कहते हैं विनाश कब होना है, 2036 में होना है, कोई कहता है 2000। अरे बाबा ने कभी डेट बताई क्या? बाबा ने तो कोई डेट नहीं बताई है। मम्मा से पूछते थे, मैं आपको मम्मा की बात बताती हूं। मम्मा से कहते थे मम्मा ये कैसे होगा, ये बात कैसे होगी, ये मम्मा अच्छा फिर वहां पे राजाई कब चलेगी, कब गद्दी पर बैठेंगे, स्वयंवर कब होगा, पहली संतान कब होगी। मम्मा का उत्तर होता था जो बात मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाई है उस बात पर अपनी कमेंट देना टीचर का डिसरिगार्ड है। मम्मा कभी नहीं बताती। आज मैं आपको मिसाल देती हूं, आज आप सब पवित्रता के व्रत में हैं। साधु संत महात्मा हैरान होते हैं। दुनिया में आप किसी को कहो हम सब ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं, दुनिया मानती है? मानती है दुनिया? दुनिया नहीं मानती। क्यों? उनकी बुद्धि विकसित ही नहीं है, उनकी बुद्धि सोच ही नहीं सकती है कि ऐसी दुनिया भी हो सकती है। इसलिए वो आपको डाउट करते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन हम तो अनुभवी हैं ना, हम लोग तो सब ब्रह्मचर्य व्रत की पालना में बैठे हैं, पवित्र होली हंस बैठे हैं, ये तो हम सब जानते हैं ना, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दुनिया वाले उसको समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही कई बार सोचते हैं योग बल की संतान कैसे होगी। अरे जब होनी होगी होगी, अभी तो आप पढ़ो ना, अभी पढ़ने का मौसम है, योग बल संतान पैदा करने का मौसम नहीं है, तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? पहले पढ़ तो लो। बाबा को जब पढ़ाना होगा बताना होगा बता देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप टीचर को क्यों बोल रहे हो कैसे होगी योग बल की संतान हमें बताओ? टीचर कहता पहले पढ़ो, पहले लायक तो बनो, पहले लायक तो बनो, सूर्यवंशी संस्कार इतने लायकियत से धारण तो करो, तब देखी जाएगी, ठीक बात। इसलिए बाबा माँ और बाबा टीचर पर कभी भी हमको डाउट नहीं करना है कि बाबा ने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, ये बाबा की मर्जी है। जब हम लोग इतने योग्य बनेंगे बाबा सब कुछ बता देगा। ओके, अच्छा अब चलो सदगुरु। सदगुरु क्या करता है, गुरु क्या करता है? गुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, उसकी राह बताता है। और गुरु क्या करता है? गुरु मंत्र देता है, गुरु वरदान देता है, गुरु श्रीमत देता है, और गुरु पाप काटने की युक्ति बताता है। और गुरु क्या करता है? और भी कुछ करता है गुरु, नाम भी देता है, शायद नाम भी देता है। हमारा तो सदगुरु है। देखिए परम गुरु नहीं हम कहेंगे, परम गुरु माना अनेक गुरुओं में परम नहीं, बाबा सदगुरु है, अन्य सब गुरु है। हमारा सदगुरु हमको मंत्र देता है और मंत्र देकर के कहता है सबको बताओ। वो गुरु कहते किसी को नहीं बताना, आप ही रखना। हमारा सदगुरु कहता है खूब बताओ, सबको बताओ। अच्छा फिर हमारा गुरु रोज वरदान देता है। हमारा सदगुरु रोज वरदान मिलता है ना, रोज मुरली में वरदान आता है, तो वरदानों को अपनी झोली में भर के रखना है सदा। फिर हमारा गुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाता है ना। फिर हमारा सदगुरु और क्या करता है? श्रीमत देता है। सदगुरु से बड़ी श्रीमत और कहीं नहीं है। तो बाप के रूप से आज्ञाकारी, टीचर के रूप से वफादार और सदगुरु के रूप से फरमान बरदार। सदगुरु का फरमान है, फरमान है उसका पालन करना है। तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बद्दार। ओके, अब चलो, और भी है सदगुरु, टाइम हो रहा है इसलिए मैं फास्ट जा रही हूं। और सदगुरु श्रीमत देता है, श्रीम, हाँ सदगुरु नैनो से निहाल करता है, बोलते हैं ना नैनो से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, सदगुरु नैनो से निहाल करता है। बाबा की दृष्टि से हम बच्चे क्या हो जाते हैं, आजकल टीवी पर दिखाते हैं ना, बाबा की दृष्टि देते हैं टीवी पे दिखाते हैं, तो हम दृष्टि से निहाल हो जाते हैं, तो सदगुरु हमको निहाल कर देता है। और भी कुछ है सदगुरु का, अब श्रीमद् हम संबंध कैसे निभाते हैं, इन सब बातों की धारणा करके, इन सब चीजों को पालन करके, सतगुरु ने मुझे क्या श्रीमद् दिए याद करो, मैं उस श्रीमद् का कितना पालन कर रही हूं चेक करो। जब हम ये सब करते हैं तो माना हम संबंध, कभी बाप रूप से याद करो, कभी टीचर के रूप से याद करो, सब इकट्ठे नहीं करो, खिचड़ी नहीं पकाओ, अलग अलग समय पे करो, कभी बाप से, कभी टीचर से, कभी सखा रह गया, साजन रह गया, कभी साजन के रूप, साजन, माताओं को साजन पसंद है, साजन पसंद है ना, तो बाबा साजन तो सबसे बढ़िया साजन है, ऐसे है ना। अच्छी सजनी कौन, बोलो आप सब अनुभवी हो, अच्छी सजनी कौन, जो जो साजन के इशारों को समझे, साजन के इशारों को समझे, अच्छी सजनी साजन के कदम पे कदम रखकर के चलती है, अच्छी सजनी सदा श्रृंगारी हुई रहती है, कोप भवन में नहीं जाती, कोप भवन समझते ना श्रृंगार उतार करके रूठ जाना ना, अच्छी सजनी सदा श्रृंगारी हुई रहती है, अर्थात सदा गुणों से भरपूर, और श्रृंगार थोड़ी करेंगे हम, लेकिन गुणों से भरपूर। अच्छी सजनी अपने साजन का नाम रोशन करती है, साजन के साथ जाएगी तो गहना कपड़ा ठीक से पहन के जाएगी, ठीक से, कहते भी किसकी युगल है, तो साजन का नाम रोशन करने वाली है अच्छी सजनी। अच्छी सजनी डिमांडिंग नहीं होती, मेरे को ये ला के दो, ये साड़ी ला के दो, ये गहना ला के दो, ये फलाना, अच्छी सजनी ये नहीं करती, अच्छी सजनी समझदार होती है, जितनी साजन की कमाई होती है उसमें एडजस्ट करने वाली होती है, उसमें भी बचाने वाली होती है, ऐसे है ना। अच्छी सजनी सदा जी हजूर जी हाजिर करती है, त्याग मूरत होती है, तो बाबा हमारा साजन है, हमको भी जी हजूर जी हाजिर करना है, सदा बाबा के कदम पे कदम रखना है, रूठना नहीं है, को भवन में नहीं जाना है, सदा गुण मूरत रहना है, शक्ति मूरत रहना है, श्रृंगारी मूरत रहना है, ऐसे बाबा के साथ, बाबा आपने मुझे कितने श्रृंगार दिए, श्रृंगार सेट होते ना भाई आप लोगों के, नौलखा हार होगा तो उसके साथ की वो ये अंगूठी भी होगी, ये भी होगी, गहने भी होंगे, सब एक जैसे होंगे ना। बाबा ने हमको कितने दिए, सहन शक्ति का दिया, समाने की शक्ति का दिया, प्रेम का दिया, धैर्यता का दिया, कितने सेट दिए आपके साजन ने आपको, सोचो तो सही, सोचो। हर एक सज्जनी देखना कि बाबा ने आपको कितने सेट और कितने गहने, कितने कपड़े आपको दिए, मैचिंग, मैचिंग होता है ना, मैचिंग भी होता है, कंट्रास्ट भी होता है, कंट्रास्ट बैलेंस, बैलेंस रखने वाले, और मैचिंग एक जैसे, ठीक है। तो अब सब सज्जनियां, आप सब सज्जनियां बैठी हो, सज्जनी वही जो साजन को प्रिय लगे, तो मेरे को सब काम ऐसे करने हैं जो मेरा साजन मुझसे सदा खुश रहे, जो मेरा बाबा सदा मुझसे खुश रहे, ठीक है, ओके। आज इतने ही करती हूँ, बाकी आपका सखा का रह गया, वारिस का रह गया, वो फिर कभी, ठीक है, ओके। अभी क्लियर है? अब जब आप योग में बैठो तो योग में एक एक लेकर उसकी गहराई में जाकर के संबंध की, ये संबंध में कहां तक निभा रही हूं। दादी गुलजार ने हमको एक बात बताई, सिखाई, देखो सब संबंधों का रस अनुभव करना आवश्यक है। क्यों? जो संबंध का अनुभव बाबा से नहीं होगा, वही संबंध अंत में आपके आगे परीक्षा बन करके आएगा। परंतु सर्व संबंधों में सब कुछ है, लेकिन आपको मानो माँ का संबंध अच्छा लगता है, आप भले बाबा को माँ के रूप से याद करो, नो प्रॉब्लम। आपको पिता का रूप अच्छा लगता है, पिता के रूप से याद करो, लेकिन अनुभव सर्व संबंधों का हो, ये जरूरी है। सुना सभी ने, अनुभव सब संबंधों का होना चाहिए, बाकी याद जिस संबंध में आप चाहो उस संबंध से याद कर सकते हो, ठीक है माताएं, ओके। शिव शक्ति से ना, ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू, ओम शांति।